दावन के पाकला में से पढ़ेंगे दानियल की किताब उसका 9 बाब उसकी 22 आयत से लेके 26 आयत तक। कलाम में यूँ लिखा है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश व फहम बख्शूँ। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाकतरीन मकाम मंसूख किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूह फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मक्तिस को मिसमार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। पाक कलाम का पढ़े और सुनी जान पे काम की बरकत हो।
खुदा शुक्र कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स का फज़ल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। किताब मुकद्दस में जो आयात अभी तलावत हुई, 22वीं आयत, फरिश्ता दानियल के पास आता है, दानियल खुदा की तरफ से उसे हिकमत की रूह बख्शी गई, उसे ख्वाबों की ताबीर बताने की तौफीक बख्शी गई है, खुदा ने उसे मुस्तकबिल के भेद अता किए हैं, खुदा ने उसे अपना नबी मुकर्रर किया है। वो बाबल में तमाम हकीमों, तमाम फालगिरों और नजूमियों और कसरियों और पेशीन गोइयां करने वालों और आने वाले जमानों के हालात बताने वालों और तमाम उलूम के जो माहिरीन हैं उन पर उसे हुक्मरान बना दिया गया है। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आता है, इतनी हिकमत और इतना फहम रखने वाला शख्स, इतनी सलाहियत और एबिलिटीज रखने वाला शख्स जब फरिश्ता उसके पास आता है, खुदा का नुमाइंदा तो उससे कहता है, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूं कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। ये सब कुछ रखने के बावजूद कमी थी, और ज्यादा उसे दानिश व फहम, विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिलने की जरूरत थी, ताकि वो भेद, वो बातें जो अभी खुदा जाहिर करने वाला था उन्हें समझ सके। पूरी सल्तनत में, जो बाबल की सल्तनत है, उसमें सबसे ज्यादा अकलमंद शख्स दानियल, उसे भी खुदा का फरिश्ता आके कहता है कि मैं आया हूं कि तुझे दानिश व फहम, विजडम और अंडरस्टैंडिंग, अक्ल बख्शूं, ताकि तू बातों को समझ। जब दानियल को बहुत ज्यादा बातों के समझने के लिए खुदा की तरफ से हिकमत और अकल की जरूरत थी, तो हम कहां थे? हमारा मयार दानियल के बराबर नहीं है, हम उससे कम सलाहियतों और कम अकल के हामिल हैं, हम दानियल के जैसे रूहानी मयार पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि दानियल तो वो है कि जिसने अपने आप को गैर कौमों के बीच में, बादशाहों के दरबारों में भी अपने आप को पाक और साफ रखा, खुदा के ताबे रहा, खुदा का रूह उसमें था, उसे हिकमत बख्शी गई थी, उसे खुदा ने अपने रूह से नवाजा था। 4 बादशाह गुजरते हैं, दानियल सरफराजी पे सरफराजी पाता नहीं। तो हमें भी कुछ बातें समझने की जरूरत है। जब दानियल को ये बातें समझाने के लिए फहम अता हुआ, हमें भी इस भेद को समझने की जरूरत है। दानियल को जो भेद बताया गया वो उसकी कौम के बारे में था, वो इसराइल के बारे में था, और वो बड़ा खास भेद था जो खुदा यीशु मसीह की बाबत था। मसीह बादशाह के मुतालिक दानियल की मार्फत नबूवत, दानियल को ये पैगाम दिया गया कि ममसूह फरमा रवा द अनॉइंटेड किंग, वो जिस पे खुदा का मसा है, दी क्राइस्ट दी अनॉइंटेड वन, वो रूलर, वो किंग, वो बादशाह हुक्मरान, उसके बारे में दानियल को भेद दिया गया और उसे कहा गया कि तुझे समझने के लिए फहम दिया जाता है, अकल दी जाती है, तुझे दानिश अंडरस्टैंडिंग और विजडम दी जाती है, मैं तुझे समझाता हूं कि ये बातें क्या है। सो खुदा हमारे लिए भी चाहता है कि हम उससे हिकमत मांगे, जो मांगता है वो उसे बगैर मलामत किए फैयाजी से जेनरसली अता करता है। हम इस भेद को समझें जो दानियल की मार्फत हम तक पहुंचता है। एनॉइंटेड रूलर, क्राइस्ट द किंग, क्राइस्ट लव्स, ये ख्रिस्तुस, यूनानी में ख्रिस्तुस उससे निकला है, क्राइस्ट मतलब मसा किया हुआ, द एनॉइंटेड वन, वो जो खास मसा किया गया, ममसूह फरमारवा रूलर किंग बादशाह। और ये बादशाह वो है जिसकी बाबत दानियल ही ने सातवें बाब की 13वीं और 14वीं आयात में लिखा है, मैंने रोया, रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा, वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाब, कभी खत्म ना होगी उसकी बादशाहत, और वो तमाम कौमों, तमाम बादशाहतों, तमाम सल्तनतों, तमाम उम्मतों पर हुक्मरानी करे। ये ऐसा बादशाह दानियल ने बताया कि वो ममसूह फरमा रवा तमाम कौमों और उम्मतों पर हुक्मरानी करेगा और उसकी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए होगी। बिलाम ने जो एक गैर कौम नबी था, गिनती की किताब में उसका जिक्र है, गिनती की किताब का बाब नंबर 24 और आयत नंबर 17 में बिलाम ने एक पेशीन गोई की थी इसराइल का असा और याकूब का सितारा, उससे कहा ही द स्टार ऑफ जेकब एंड द सेप्टर स्टाफ, वो असा, वो बादशाहों के हाथ में जो सुनहरी लाठी होती है, सेप्टर या असा उसे या स्टाफ कहते हैं, वो इसराइल था। बिलाम ने उसे याकूब का सितारा और इसराइल का असा, द स्टार ऑफ जेकब और द सेप्टर ऑफ इसराइल कहा है। और यसाया ने तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा, कहा कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा और वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, उसका तख्त वो संभालेगा और उसकी सल्तनत का कभी आखिर ना होगा। वो दाऊद का वारिस है, वो दाऊद की असल है, वो दाऊद के तख्त का वारिस है और हकीकी बादशाह, ही इज द ट्रू किंग। वो ना सिर्फ हकीकी बादशाह, अबदी बादशाह है, उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। दानियल ने कहा वो मसा किया हुआ बादशाह है, वो तमाम कौम और उम्मतों और सल्तनतों पर हुक्मरानी करेगा और उसकी सल्तनत का अख्ताम ना होगा। बिलाम ने कहा वो याकूब का सितारा है और इसराइल का असा, सुनहरा सा जो बादशाहों के हाथ में बादशाही की अलामत है। यसाया ने कहा कि वो खुदाए कादर है, अजीब है, मुशीर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, वो हकीकी बादशाह, अबदी बादशाह, वो दाऊद के तख्त का हकीकी वारिस। और मीका ने उसके बारे में कहा वो इसराइल का अबदी हाकिम है, अबदी हाकिम है इसराइल का। और मीका ने तो उसके पैदाइश की जगह भी बता दी थी कि वो कहां पैदा होगा। ऐ बैतलहम इफ्राता, तू यहूदा के शहरों में अगरचे बड़ा नहीं छोटा है, तो भी तुझ में से सरदार निकलेगा जो इसराइल की गलबानी करेगा, वो हुक्मरानी करेगा। सो दानियेल के पास इन नबियों के बयान किए हुए निशानात थे, शहादतें थी, निशानियां थी उस ममसू बादशाह के बारे में। दानियेल को मालूम था क्योंकि ये साया दानियेल से पहले के जमाने का, बिलाम दानियेल से पहले के जमाने का है, मीका ने दानियेल से पहले के जमाने में नबूवत की, इन सब की बातों के बारे में दानियेल जानता था कि एक हुक्मरान आएगा जो इसराइल का हुक्मरान होगा, जो यहूदा के घराने से होगा, जो दाऊद के घराने से होगा, वो तमाम इसराइल का हाकिम होगा, वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, वो अबदी बादशाह होगा और वो तमाम कौमों और सल्तनतों पर हुक्मरानी करेगा। ये दानियेल को इल्म था इन बातों, जैसे हमें पता है कि यसाया ने क्या पेशीन गोइयां की, दानियेल ने क्या पेशीन गोई की, हम जानते हैं क्योंकि ये बाइबल हमसे पहले मौजूद है, लिखी गई है। इसी तरह दानियेल से पहले ये नबूवतें मौजूद थीं, वो इनके बारे में जानता था कि यहूदी जवान होते। यसाया ने यह भी कहा था वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा। दानियेल को बताया गया कि वो कत्ल किया जाएगा, उसको भी रीअफर्म किया गया जो यसाया 53 बाब में। यहां दानियेल को बताया जाता है वो ममसूह फरमारवा कत्ल किया जाएगा। सो दानियेल पर भेद खुलता है, वो ममसूह फरमारवा कत्ल होगा और वो जमाना कौन सा होगा। दानियेल की किताब का बाब नंबर 9 सामने रखिए और उसकी 25वीं आयत। पस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से एक मुकाम, एक वाकया, एक नुक्ता तारीख में बता दिया कि जमाना कब शुरू करना है तूने गिनना, जब यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म जारी हो जाए। क्योंकि दानियेल को गुलाम बनाया गया उसके 3 दोस्तों के साथ, हनानिया, मिसाइल और अजरिया, जिनके नाम बाद में तब्दील करके क्या रखे गए, सदरक, मेशक और अबदनजू, गुलाम बना के बाबों में ले जाए गए, हैकल तोड़ दी गई, जला दी गई, शहर बर्बाद कर दिया गया। अब यरूशलेम शहर वीरान और बर्बाद पड़ा है, हैकल टूटी हुई है और दानियेल को यह बताया जा रहा है कि एक वक्त आ रहा है कि जब यरूशलेम शहर को बहाल करने और फिर से तामीर करने का हुक्म सादिर हो और तूने तब से वक्त गिनना शुरू कर देना है। कब तक गिनना है? तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूह फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 और 62 जमा करें तो 69 हफ्ते बनते। यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर ममसूह फरमा रवा तक ये 62 हफ्ते और 7 हफ्ते मिलाकर 69 हफ्ते बनते हैं। ये एक वक्त, एक ड्यूरेशन, एक दौरानिया, एक टाइम पीरियड दिया गया है ममसूह फरमा रवा के जाहिर होने के। अब ये 69 हफ्तों से क्या मुराद है? यहूदी अकीदे के मुताबिक यहां हफ्ते से मुराद वर्षों का हफ्ता, 7 साल मिलकर 1 हफ्ता बनता है। 1 हफ्ते में 7 साल और अगर 7 हफ्ते शुमार करें तो कितने होते हैं? 1 हफ्ते में 7 साल और 7 हफ्तों में 49, 49 ईयर्स, 1 कम 50। और फिर 62 हफ्ते, क्योंकि 2 सेट बताए गए हैं, 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते, 7 हफ्ते हो गए 49 ईयर्स, 49 बरस, और 62 हफ्तों को 7 से ज़रब दी जाए तो ये 434 साल बनते हैं। और अगर दोनों को जमा किया जाए 69 ईयर्स, 69 वीक्स ऑफ ईयर्स, 69 हफ्तों को जमा किया जाए, शुमार किया जाए, तो ये 483 बरस बनते हैं। यानी दानियेल जब यरूशलेम की बहाली का, तामीर का हुक्म सादर होगा, तब से ममसूह फरमा रवा के जमाने तक 483 बरस होंगे। दानियेल बाद नंबर 9 और 26 यहां, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा। यानी जब 69वां हफ्ता चल रहा होगा, आखिरी हफ्ता चल रहा होगा, तो वह ममसूह कत्ल कर दिया जाएगा। यानी 483वां बरस जब आएगा तो उसके आसपास वो ममसूह बादशाह कत्ल कर दिया जाएगा। अब तारीख बता दी गई, दानियेल को यह समझाया गया, फरिश्ता उसके पास आया और कहा, मैं तुझे भेद बताने लगा हूं जिसकी समझने के लिए तुझे अकल की जरूरत है, दानिश और फहम की जरूरत है, विजडम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो मैं तुझे दे रहा हूं कि यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर ममसूह फरमारवा के कत्ल होने के बीच में 483 बरस है। और ये वक्त कब शुरू होता है? नहमिया की किताब का बाब 2। नहमिया साकी है, ये भी बनी इसराइल में से है, कैद हुआ है, गुलामी में है, और उसे भी बादशाह का साकी कप बेरर बनाया गया है। और वो बादशाह के सामने आता है और उसका चेहरा उदास है। बादशाह पूछता है, क्या बात है, तू क्यों उदास है? वो कहता है, मेरे बाप दादा की कब्रों का शहर, मेरे बुजुर्गों का शहर यरूशलेम वीरान पड़ा है, मेहरबानी कर उसे तामीर करने का हुक्म जारी कर दे। बादशाह हुक्म जारी कर, जाओ तामीर करो। नहमिया की किताब का 2वां बाब ये वक्त बताता है कि यरूशलेम की बहाली का हुक्म बादशाह ने जारी कर दिया। यहां से 483 बरसों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उनकी गिनती शुरू हो जाती है। और ये वाकया मसीह खुदावन की पैदाइश से 449 बरस पहले, ये यहूदी साल है, ये हमारे साल नहीं है। जैसा हमारा साल होता है जनवरी से दिसंबर तक, ये उस वक्त कैलेंडर नहीं चलता था, यहूदियों का अपना कैलेंडर था। खरूज की किताब का 12वां बाब है, उसमें कहा खुदा ने कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू, और उन्होंने तब से अपना कैलेंडर अलग से काउंट करना शुरू किया हुआ। पहले से कैलेंडर मौजूद थे दुनिया में, लेकिन तब से बनी इसराइल का एक दीनी कैलेंडर अलग से शुरू होता है, और उस कैलेंडर के हिसाब से ये 449 बरस बनते हैं। बादशाह का हुक्म जारी करना और मसीह खुदावन की पैदाइश 449 वर्ष। मसीह बतौर बादशाह खजूरों के इतवार कौम पर जाहिर होता है, क्योंकि उस दिन जकरिया वाली पेशीन गोई पूरी होती है ना, कि देख तेरा बादशाह गधे पर बच्चे, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार चला आता है, वो हलीम है और दिल का फरोतन। सारी कौम को मालूम हो गया कि वो बादशाह जिसने आना था, जिसके लिए ऐ दरवाजों अपने सर बुलंद करो, ऐ फाटको बुलंद करो अपने सर, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होता है, जिसके लिए वो गाते थे होशाना करम करके निजात दे, वो खजूरों की डालियां लेकर जिसके आगे फैलाते थे, वो जिसके आगे कपड़े फैलाते थे, उस दिन खजूरों के इतवार के दिन खुदावंद यीशु अपनी कौम पर जाहिर होता है कि मैं ही वो बादशाह हूं कि जो सय्यून का बादशाह, इसराइल का बादशाह, दाऊद के तख्त पर बैठने वाला हकीकी वारिस हूं, जो अबदी बादशाहत का मालिक हूं। उस दिन उसने अपने आप को बतौर बादशाह जाहिर किया। ये मसीह की जमीनी जिंदगी का 34वां बरस था। 33 बरस से जायद मसीह की उम्र हो चुकी थी। 33 ईयर्स खुदावंद ने कंप्लीट कर लिए थे, अब ये 34वां बरस था। और 449 में 34 जमा करें, 483 मसीह उसी हफ्ते में कत्ल होता है। इतवार के दिन वो बादशाह के तौर पर जाहिर होता है और जुमे के दिन वो मसलूब कर दिया जाता है। उसी हफ्ते में, अभी हफ्ता पूरा नहीं होता, उसी हफ्ते में वो कत्ल हो जाता है। उसी वीक में वो कत्ल होता है। 34वें बरस में वो कत्ल हो जाता है। 449 और 34 जमा करें तो 483 बरस बनते हैं। यरूशलेम की बहाली के हुक्म से लेकर मसीह के कत्ल होने के साल तक पूरे 483 बरस बनते हैं, जो दानियल को हिसाब लिखाया गया। 483 बरस होंगे तो 62 हफ्ते जब हो जाएंगे तो वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो मसीह की पैदाइश का थोड़ा सा सुराग हमें मिल गया कि वो किस वक्त, किस जमाने में, किस टाइम पीरियड में पैदा हुआ। तो यहूदियों को और जो यहूदी ईमानदार थे उनको सालों का शुमार दानियल से मिल गया। 483 बरस पूरे हो जाते हैं और वो ममसूह फरमा रवा कत्ल हो जाता है। अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। सालों का भेद पता चल गया, ये 69 वीक्स 483 483 बरस है। यरूशलेम की बहाली का हुक्म नहमिया की किताब के दूसरे बाब में मिलता है और मसीह खुदावन के सलीब पर मारे जाने के बीच में 483 बरस यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पूरे होते। अब दानियल उस वक्त बाबल में है, इराक मौजूदा सेटअप में, इराक। और अगर हम इसे देखें नक्शे में, इसराइल के मशरिक, इसराइल के मशरिक में ये जगह पड़ती है जहां दानियेल उस वक्त मौजूद है। बैतलहम के मशरिक में है, नासरत के मशरिक में है, गलील के मशरिक में है, यहूदिया के मशरिक में है, जिसे बाइबल में पूरब लिखा गया है। अंग्रेजी में उसे ईस्ट कहते हैं, हम अपनी उर्दू जुबान में उसे मशरिक भी कहते हैं। ये इसराइल के देश से मशरिक में जगह है कि जहां दानियेल ने यह पेशींगोई की। याद रहे कि दानियेल बाबल के तमाम हकीमों, साहिरों, नजूमियों, कस्तियों और फालगिरों का सरदार था। दानियेल की किताब में दूसरा बाब 48वीं आयत और 5वां बाब 11वीं आयत में लिखा है कि बादशाह ने उसे सब पर हुक्मरानी दे दी थी, क्योंकि कोई बादशाह के ख्वाबों को बता ना सका था। दानियेल ने खुदा की दी हुई ताकत, बरकत, हिकमत के साथ बता दिया, तो बादशाह ने उसे सबसे ऊपर कर दिया, क्योंकि बादशाह ने कहा था अगर कोई नहीं बता पाएगा मेरे ख्वाब और उसकी ताबीर तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दानियेल ने बता दी ताबीर, क्योंकि पूरी मुमलकत में कोई और था नहीं, बादशाह ने उसे सबसे ऊपर कर दिया। अब जहन में रखिएगा कि दानियेल तमाम नजूमियों, तमाम फालगिरों, तमाम मुस्तकबिल की पेशेंगोइयां करने वालों, फालगिरों, हकीमों, जो भी आप नाम दे लें उन्हें, फॉर्चून टेलर्स, फ्यूचर टेलर्स, उन सब का सरदार। दानियेल की कही हुई बात, उसकी लिखी हुई बात उनके लिए अटल है, हुक्म करना। जब दानियेल बाबल में ही है तो आखिरी बादशाह फारस का बादशाह है जो हुकूमत ले लेता है। और फारसियों की हुकूमत जरा नक्शे में देखिए, पूरा इलाका जो ऑरेंज में है, नारंगी रंग में है, ये फारसियों की सल्तनत थी। इसी में ईरान भी है मौजूदा, इसी में मौजूदा इराक भी है, इसी में शाम है, इसी में इसराइल है, अरेबिया का इलाका अलग था, इसी में हिंदुस्तान तक फारस की हुकूमत थी। और आस्तर की किताब में आपको मिलेगा हिंदुस्तान से कूश तक। जरा देखिए आस्तर की किताब में नहमिया के आगे, आस्तर की किताब में पहला बाब है और पहली ही आयत, अक्सवेरस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सवेरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। एक तरफ यह हिंदुस्तान को सरहद लगती थी, दूसरी तरफ मौजूदा अफ्रीका में इथोपिया, उसे कूश कहते हैं, वहां तक इतनी बड़ी सल्तनत फारस की थी। तो जब पूरब से मजूसी आते हैं, जब मशरिक से मजूसी आते हैं, जब वो ईस्ट से वाइज मैन आते हैं, तो मेरा ये गुमान है और बाइबल के जो सिखाने वाले हैं उनका ये ख्याल है, गालिब इम्कान ये है कि ये मजूसी, ये वाइज मैन, ये मेजाइज, ये उन्हीं की नस्ल से होंगे कि जो कभी दानियेल की हुक्मरानी में थे। ये अपने बाप दादा से सुनते आए थे कि दानियेल ने एक बादशाह के बारे में पेशेंगोई की है कि जो सारी कौमों पर हुक्मरानी करे। दानियेल ने एक पेशीन गोई की है कि वह ममसूह फरमा रवा खुदा की तरफ से आएगा, क्योंकि वो तमाम कौमों पर सल्तनत करेगा। उन्हें मालूम था कि दानियेल ने वो ख्वाब बताई थी कि जिसमें बगैर हाथ लगे एक पत्थर कटता है, लुढ़कता है और वो मूरत को गिरा देता है। और दानियेल उसकी ताबीर ये बताता है कि खुदा की बादशाहत बाद जमीन की सारी बादशाहतों को रौंद देगी, मस्मार कर देगी और खुदा की बादशाहत कायम होगी। उन्हें नस्ल दर नस्ल ये इल्म मुंतकिल हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। दानियेल का सहीफा महफूज था, मौजूद था। उन्हें यकीन था कि दानियेल ने जब पेशीन गोई की है, जब दानियेल ने नबूवत की है, तो वो फरमा रवा पैदा होगा। और उन्हें इस बात का भी एहसास था कि 483 बरस जब पूरे होंगे तो तब उसको कत्ल होना है और उसका बादशाह बनना जरूरी है। और हो नहीं सकता कि बनी इसराइल में वो 30 बरस से छोटा। जब यूसुफ हुक्मरान बनता है 30 बरस, जब दाऊद बादशाह बनता है 30 बरस, खुदा के घर में खिदमत करने के लिए काहिनों की उम्र 30 बरस कम से कम। जब यस्सु ने मुनादी करना शुरू की, तौबा करो क्या, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, या उसकी उम्र क्या थी 30 बरस। उनको मालूम था कि 483 में से कम अज कम हमें 30-35 निकालने पड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे। 445 से 450 के बीच में जब 445 आ गया होगा, उनकी नजरें आसमान में सितारों को तलाश करती रही होंगी, अब जमाना करीब है, अब उस फरमा रवा के नमूदार होने का वक्त करीब है, अब उसकी पैदाइश करीब है, क्योंकि कम अज कम 30-35 का हो के तो उसको कत्ल होना ही है। 30 से ऊपर का होगा तो फरमा रवा ममसूह हो। उन्होंने 445 के आसपास ही नजरें लगा ली होंगी, बारियां लगाते होंगे, वही हिसाब रखना, रात को दूरबीन पूरी फिक्स करना, उसको साफ करते रहना, कहीं धुंधला ना हो जाए, हमें दिखाई देना चाहिए सितारा। और उनकी नजरें सितारों की तरफ थी, उन्होंने तलाश जारी रखी, उन्होंने दानियेल की पेशींगोइयां अपने दिल में महफूज रखी थी। उन पे यकीन था कि वो ममसूह फरमा रवाएगा जो कौमों पर हुक्मरानी करेगा। सो इसीलिए जब वो तलाश के लिए निकलते हैं, मत्ती की इंजील इसका दूसरा बाब है, जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, कितने मजूसी, 3 है बाइबल में क्या लिखा है, कई मजूसी, तादाद नहीं लिखी, लेकिन हम रिवायत बना ली है, क्योंकि सोना मुर्र लुबान 3 चीजें जिक्र हैं, 3 मान लेते हैं। कई मजूसी कहां से आए, पूरब से, यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह। लेकिन अगली आयतें पढ़िए जरा, हेरोदीस क्या पूछता है। यह सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिन और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा, जिसके पास बाइबल है वो अगले अल्फाज पढ़े, उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश, उसने बादशाह नहीं पूछा, क्योंकि जब यकीनन उन्होंने बात की होगी हेरोदीस यहूदियों का बादशाह जिसके बारे में दानियेल ने पेशीन गोई की, वो ममसू बादशाह, वो मसा किया हुआ बादशाह, हम उसका सितारा देख कर आए हैं, वो पैदा हो चुका है, ये बरस उसके हैं। तो उसने बादशाह नहीं ढूंढा, उसने कहा मसीह को कहां पैदा होना है ये बताओ। और फिर उसको क्या बताया गया, कौन सी पेशीन गोई, मीका की पेशीन गोई उसको बताई गई कि यहूदिया के शहर बैतलहम में उसका पैदा होना जरूर है। मतलब ये कि मजूसियों को यकीन था कि ये दानियेल की पेशेंगोई वाला बादशाह है। सो जब हेरोदीस से बात हुई, उसने भी जान लिया कि ये मसा किया हुआ मसीह, द क्राइस्ट, द एनॉइंटेड वन है कि जिसकी पैदाइश की बात करते हैं। सो दानियेल की पेशेंगोई को लेकर मजूसी निकले थे, इसलिए मीका की उनको याद दिलाई गई कि मीका में लिखा हुआ है कि बैतलहम में पैदा। मजूसी ध्यान में थे, फिक्र में थे, आरजू में थे, साल गिनते रहे थे, इस साल भी नहीं निकला कोई सितारा, चलो एक बरस और सही, इस साल भी नहीं निकला सितारा, चलो अगले बरस सही, इस साल भी नहीं निकला सितारा, अगले बरस सही। और जब निकल आया तो वो मारे खुशी के निकल खड़े हुए, और पता है कितना वक्त लगा, उन्हें बता चुका हूँ अपनी कलीसिया को, हेरोदीस ने कितने कितने उम्र के बच्चे मरवाए थे, 2 दिन के, 1 हफ्ते के, 10 दिन के, महीने के, कितने बरस के, 2-2 बरस के, उस वक्त के हिसाब से के जिसकी बाबत मजूसियों ने उसे बताया था। ये मत्ती की इंजील के 2 बाब में लिखा हुआ है, यानी मजूसियों को सितारा देखकर हेरोदीस के महल तक पहुंचने में कम अज कम, चलो कुछ 2 महीने कम कर लो, गुंजाइश दे देते हैं, 1.5 साल कर लो, 1.5-2 साल कर लो, अगर हफ्ता 10 दिन की बात होती है वो 2 बरस के बच्चे क्यों मरवाता, वो कहता जी जिन्हें 8 दिन दे 10 दिन दे महीने दे बच्चे ने जो 1.25 महीने थे कैंसल कर, 2 बरस के उस वक्त के शुमार के हिसाब से जिसकी बाबत उसने यहूदियों से पूछा, मजूसियों से पूछा, वक्त लगा, पहले इंतजार सालों करते रहे, कब सितारा निकलेगा तो हम निकलेंगे उसको सिजदा करने। पहली आमद की आरजू रखने वालों से सीखने की जरूरत है, कई बरस लगे उन्हें इंतजार कब आएगा, तैयारी करके रखे, सोना भी तैयार, मुर भी तैयार, लुबान भी तैयार, ऊंट भी तैयार, कपड़े भी तैयार, अनाज भी तैयार, क्योंकि महीनों का और साल से ऊपर का सफर है। जब 1.5 बरस लगा आने में, कम से कम 1.5 बरस लगा, जाने में कितना लगा होगा, 18 महीने लगे आने में, लगा लो रफ एस्टिमेट 18 महीने, वापस जाने में कितना वक्त लगा, सेम नहीं लगा, नहीं नहीं हाफ, हाफ से भी कम होगा, पता है क्यों, आते हुए दिन में आराम करते होंगे क्योंकि दिन में सितारा नहीं है, सफर रात को करते होंगे, सितारा निकला अब दिन हो गया सो जाओ आराम कर, रात हो गई सितारा निकला चलो उसके पीछे, तो जब वापसी पे उन्हें जरूरत नहीं होगी रात के इंतजार की, भागम भाग जाते होंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई छूटी, मेरा कारोबार, मेरा काम काज, मेरे मुरीद छूटे हुए हैं जिनको मैंने जाके उनके हाथ जायचे सितारों के चाले बतानी, मेरे घर वाले तो पीटते होंगे कहाँ चला गया, जल्दी जल्दी भगाते होंगे अपनी सवारियां, लेकिन कोशिश करके वो 1.25 साल लगा लो जी वो पहुंच गए। 1.25 साल के सफर में उन्होंने खाना भी खाया, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने क्याम भी किया होगा, जानवरों को भी खिलाया पिलाया होगा, कितना पैसा लगा होगा उनका, इंतजार, चाहत, आरजू बादशाह को देखने की, उसे सिजदा करने की, आओ हम भी उस अबदी हुक्मरान की आरजू, उसको देखने की आज उसके दीदार के तालिब हैं। वो आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। आओ हम मजूसियों की तरह नबियों की पेशीन गोइयों को सीने से लगा कर रखें। दानियल ने कहा था वो आएगा, तो आज आएगा और आया भी। हम भी कहें हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मौतबर ठहरा। पत्रस ने अपने दूसरे खत में, आओ हम नबियों के उस पैगाम को, रसूलों के उस तालीम को अपनाएं, अपने दिल में रखें और यस्सु की आमद के मुंतजिर रहें। अब बच्चा बन के नहीं, बादशाह के तौर पर जलाली बन के, हाथ में असा लेकर, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और जलाली बनाने के लिए हमें वो आ रहा है। आओ उसका इंतजार करें, दुआ करें।